ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद्भागवतम का चौथा स्कंद अध्याय पांचवा और श्लोक संख्या 21 पूष्ण ही अपायत दंतान कालिनस्य यथा बलह शप्यमाने गिरिमणि यह अहसत दर्शयन दंतः। पुष्णो ह्यपातय दंतान कालिंगस्य यथा बलः शप्यमाने गरिमणि यो अहसत्रशयन तदंतः। पुष्णो ह्यपातय दंतान कालिंगस्य यथा बलः शप्यमाने गरिमणि यो अहसत्रशयन दंतः। पुष्णो ह्यपायदन्तान् कालिङ्गस्य यथा बलः शप्यमाने गरिमणि यो सद्दर्शयन् दन्तः। पुष्णः पुषा हरिभो पुष्ण पुषा का ही चूंकि अपायतक निकाल दिया दंतान दांत कालिंगस्य कलिंग के राजा के यथा जिस प्रकार बलह बलदेव ने शप्यमाने शाप दिए जाने पर गरिमणि शिव यह जो कुशा असहत हिंसा था दर्शयन दिखाते हुए दंतः दांत। अनुवाद और तात्पर्य श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। जिस प्रकार बलदेव ने अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में धृतक्रीड़ा के समय कलिंग राज के दंतवक्र के दांत निकाल दिए थे, उसी प्रकार से वीरभद्र ने दक्ष तथा पुषा दोनों के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि एक ने शिव को शाप देते जाने समय दांत दिखाए थे ये, और दूसरे ने असहमति वश हंसते हुए दांत निकाले थे। तात्पर्य यहां पर कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के विवाह का संदर्भ आया है। उसने दंतवक्र की कन्या का अपहरण करके उसे विवाह कर लिया था। जो ही उसे अपहरण का दंड दिया जाने वाला था, द्वारका से बलराम सहित सैनिक आ गए और क्षत्रियों में युद्ध छन गया। इस प्रकार का युद्ध विशेषतया विवाहोत्सव के समय अत्यधिक प्रचलित था, क्योंकि तब एक दूसरे को ललकारने का जोश रहता था। ऐसी स्थिति में युद्ध अवश्य संभावी होता है और उसमें सारे लोग मारे जाते तथा आपदा आती रहती। इस प्रकार युद्ध के बाद समझौता हो जाता और तब कुछ ठीक हो जाता। दक्ष का यह यज्ञ बहुत कुछ ऐसा ही था। अब वे सभी दक्ष का भग और कुशा देवता एवं भृगु मुनि शिव के सैनिकों द्वारा दंडित हुए, किंतु बाद में सब कुछ शांत हो जाए। अतः एक दूसरे से लड़ने की यह प्रवृत्ति वस्तुतः शत्रुतापूर्ण न थी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इतना शक्तिशाली था और वैदिक मंत्र द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। अतः दक्ष के यज्ञ में विभिन्न पक्षों द्वारा युद्ध कौशल का अच्छा प्रदर्शन हो सका। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपितापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सहगणारघुनाथं तं तं सुजीवं साद्वैतं सारभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणान् ललिताश्रीशाकान्तांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरे ऋषभानुस्ते देवि प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीमासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुष्णोजपायतन दन्ता कालिंगस्य यथा बलः शप्यमाने गरिमणि यो असहस्रशयनन्तः। जिस प्रकार गुरुदेव ने अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में ध्रुवपणा के समय कलिंगराज दंत वक्र के दांत निकाल दिए थे, उसी प्रकार से वीरभद्र ने दक्ष तथा पुष्प दोनों के दांत उखाड़ दिए, क्योंकि एक ने शिव को श्राप देते समय दांत दिखाए थे और दूसरे ने सहमति वश हंसते हुए दांत दिखाए थे। यहाँ दक्ष के यज्ञ में जो विध्वंस हो रहा है, शिवजी द्वारा वीरभद्र को भेजा गया और वीरभद्र ने बहुत सारे को दंडित करना चाहा, क्योंकि शिवजी का अपमान हुआ। पूजा यज्ञ इत्यादि के समय वह व्यक्ति की भावना क्या है वो देखने की आवश्यकता होती है। भावना यानी चेतना, यदि ठीक ढंग की चेतना से हम लोग सेवा पूजा नहीं करते और अपराध करते पूजा के समय तो बहुत दंड मिलता है, वैसे भी मिलता है। आप सेवा अपराध के बारे में जानते होंगे, एक जगह 32 सेवा अपराध बताए गए हैं, दूसरी जगह 50 सेवा अपराध बताए गए, दोनों में बहुत सारी साम्यता है। लेकिन सेवा अपराध क्या है? सेवा अपराध हमारी जो बुरी आदतें हैं उसके द्वारा हम अपने जिस ढंग की चेतना सेवा के समय बनानी चाहिए उस बना नहीं पाते और हमारी आदत बढ़ा जाती है। वैसे भगवान के सामने दांत दिखाना या हंस के बात करना भी अपराध होता है। देखो, दांत दिखाने के लिए क्या सजा बलराम देते हैं, दांत उखाड़ देते हैं। इसलिए ये संदर्भ बताया जाता है। अब पहले भी देखिए, भगत ने बोए फकाए थे यूं किसी के साथ, यानी कि इशारा करना और वो भी उसकी आ,
सेवा अनुरूप नहीं लेकिन परिहास, परिहास सेवा में वास्तविक हम अपनी इंद्रियों को, इंद्रियों के अंगों को साक्षात भगवान की सेवा में जुटते हैं। ये कब होता है? देखो, पहले मन में शुद्ध विचार होने चाहिए, बाद में वाचा में वही विचार प्रकट होने चाहिए, और उसके बाद अपने कर्तव्य में यानी कि जो कार्य करते हैं वो आना चाहिए। हाँ, मनसा वाचा कर्म, ये तीनों की साम्यता चेतना द्वारा एक सरखी रहनी चाहिए, तब सेवा ठीक होती है। उसी तरह जो यहां दर्शन के लिए आते हैं वो भी एक प्रकार की सेवा, सिर्फ आंखों की सेवा, और उस समय हमारी भावना यदि अलग हो तो मन में भगवान के दर्शन के लिए जाना ही है, चलो बहुत इच्छा हो गई यार ठाकुर की दर्शन नहीं किए, लेकिन वहां जाके कोई मित्र मिल गया या कोई वैसे जनसंघ यानी कि घरेलू बातें मंदिर में आकर भगवान की सामने एक तरफ दर्शन होते रहते हैं, दूसरी तरफ हम गप्पे मारते हैं और उसमें भी हंसी मजाक करते हैं और दांत दिखाते हैं, तो ये अपराध बन जाता है। पिछली बार हमने बताया था कि अपराध कैसे पैदा होता है। सर्वप्रथम अज्ञानता का कारण होता है। अज्ञानता चालू रहती है फिर भी हम अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार आगे रहते हैं, लेकिन अज्ञानता यदि चालू रहती है तो अनर्थ पैदा होते हैं। अनर्थ और अज्ञानता चालू रहती है और हम यंत्रवत सेवा करते रहते हैं तो अपराध पैदा होते हैं। अपराध बहुत जड़ होता है। अनर्थ हमारी आदत के अनुसार, और पहले आदत ही थे, अब आदत निकालना कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अनर्थ है, अनर्थ है। चार नियमों का पालन करना ही है क्योंकि ये सब अनर्थ है, ये सब अनर्थ है। कली ने इसमें आश्रय लिया है, अनर्थ है। भक्ति को टुपा देगा, बचा नहीं पाएंगे। तो इस श्लोक में ये जो शिक्षा मिलती है, दक्ष के भी दांत उखाड़ दिए और दंत वक्र के भी दांत उखाड़ दिए वीरभद्र ने, जैसे मारते हैं इसको, ये पनिशमेंट करो वो पनिशमेंट करो, तो ये हंसा था, उपहास करना, परिहास करना। भगवान का नाम परिहास में ले फिर भी हमें मुक्ति की गारंटी देते हैं लेकिन भगवत प्रेम नहीं देता। यहां तो प्रेम का अभाव है, ईर्ष्यालु वर्तन है, इसीलिए हम ये ईर्ष्या बाहर निकालते हैं। भगवान के सामने आते हैं लेकिन घरेलू बात में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एक तो ना समझ है, दूसरे हम अनर्थ चालू रखते हैं और अपराध पैदा करते हैं, इसीलिए आदत ही बन जाती है। हम बीच बीच में बातें करना शुरू कर देते हैं, एक तरफ आरती हो भगवान का ध्यान नहीं रहता, बाद में फरियाद करते हैं। जब अनर्थ चालू रहता है तो फरियाद करने से क्या फायदा, सही ना? जब अनर्थ चालू रहते हैं अपने जीवन में तो फरियाद करने का क्या फायदा। तो यहां ये कोई सामान्य मारामारी नहीं है, झगड़ा नहीं, बहुत उचित और अनुरूप दंड देना है। ये भगवान की सारी करामत है। जैसा हमारा कर्तव्य होता है उसके अनुसार ही हमें अपना फल मिलता है। भगवान के सामने दांत बना हंसना, गलत बात है, अपराध सेवा अपराध। वो तो कहा कि यदि मंदिर में बैठे बैठे गंदी वायु छोड़ना भी अपराध है, आपने पढ़ा होगा भक्ति रसामृत सिंधु, तो उसके पीछे क्या मतलब, क्या चेतना, यदि दबा के खाया होगा हजम नहीं हुआ होगा इसलिए गैस हो गए। भगवान की सारी सेवा पूजा में खाली पेट रहना चाहिए, क्योंकि शुचि कम से कम सत्वगुण में रखता है, सत्वगुण द्वारा हम पर सत्व यानी कि जो अध्यात्म है उस पर हम सोच सकते हैं, और भगवान विशुद्ध सत्व है, वो पर सत्व से भी ऊपर विशुद्ध सत्व होता है। सत्वम शुद्धम वासुदेवम संवितम, विशुद्ध सत्व को वासुदेव स्थिति कहते हैं, वसुदेव ने वो स्थिति लाई थी तभी तो भगवान उसके हृदय में प्रकट हुए और बाद में उसने दीक्षित करके देवकी के गर्भ में स्थापित हुए, हृदय में ऐसे ही हृदय में स्थापित होता है, भगवान को गर्भ जैसे अंगों में जाने की आवश्यकता नहीं, इसलिए वहां से प्रसूति भी नहीं करके निकलते। तो कहने का मतलब है कि शिव जी भगवान है, भौतिक जगत के माता पिता हैं, पिछली बार जैसे बताया था उस अनुसार, और शिव जी कोई दूसरे थोड़े हैं, भगवान विष्णु ने जब गुणों में प्रवेश करना चाहा तब वो शिव तत्व बने और गुणों में आवृत हो गए। भगवान कभी गुणों में अपने आप को डालते नहीं, इसलिए भौतिक जगत के भौतिक माता पिता के रूप में शिव और पार्वती जब आते हैं, या शिव और योनि, लिंग और योनि के रूप में जब आते हैं तो भौतिक जगत के माता पिता के, इसलिए वो गुणों में आवृत रहते हैं। लेकिन जो गुणों में आवृत सत्व रज और तीनों गुणों में से बंदे हैं वो स्वयं अपनी चेतना को ठीक रखते हैं, वो विशुद्ध भाव में बनने के लिए जपमाला लेकर ही प्रयोग करते हैं। शिव जी के हाथ में जपमाला है, शिव जी के हाथ में जपमाला है, ये क्यों बजते, क्योंकि माला भगवान का नाम, भगवान की चेतना शुद्ध बनाने के लिए है। तो कोई भी कार्य में जब हमारी चेतना शुद्ध नहीं है तो उसके पीछे कारण बताया, आहार सत्व, सत सात्विक आहार होता है तो ही सात्विक विचार आते हैं, सात्विक विचार से ही हम कम से कम भगवान की ओर झुक सकते हैं। इसलिए राजसिक तामसिक प्रक्रिया से दूर रहने के लिए, ऐसी श्रद्धा से दूर रहने के लिए सात्विक आहार की ही आवश्यकता, लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते, क्यों, क्योंकि तामसिक भाव पैदा करते, तो तामसिक श्रद्धा होगी, राजसिक श्रद्धा होगी, भगवान तामसिक श्रद्धा से प्राप्त नहीं होते, न तो राजसिक श्रद्धा से प्राप्त होते, उसे तो सात्विक श्रद्धा, क्योंकि जैसी श्रद्धा है यादृशी, यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी, जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसे ही उसकी सिद्धि होती है। हमें तामसिक सिद्धि से क्या फायदा, राजसिक सिद्धि से क्या फायदा, तो हमारे लिए ये श्लोक में अपराध की सजा क्या होती है, उसके पीछे क्या कारण है, क्यों मिलता है, सेवा अपराध से जागृत रहना बहुत आवश्यक। जब भगवान के नाम का अपराध करते रहते हैं तो सेवा अपराध अवश्य चालू, जो नाम अपराध से बचते तो अवश्य सेवा अपराध से भी बचेंगे, वैष्णव अपराध से भी बचेंगे। देखो तो नाम अपराध मुख्य बात है। भगवान के देवेशी भगवान का नाम कभी लेते हैं? और यदि लेते हैं तो कंस जैसे भी लेते थे, लेकिन ईर्ष्यालु भाव से लेते थे, सही। तो उसकी तामसिक प्रवृत्ति, भगवान को मारने की प्रवृत्ति, भगवान का द्वेषी आसुरिक प्रवृत्ति द्वारा उसे भगवान कम से कम मुक्ति तो दे देते हैं, लेकिन प्रेम नहीं देंगे। ईर्ष्यालु को प्रेम होता ही कहां? जिसमें प्रेम नहीं है वही तो ईर्ष्यालु कहलाता है। तो भगवान के प्रति प्रेम होना, तो भगवान के प्रति ईर्ष्या नहीं। इसलिए तो भगवत गीता भी अर्जुन को कही थी, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। ये अर्जुन, मैं तुझे ये अति गुह्यतमं ज्ञान कहता हूं, क्योंकि तू मेरा ईर्ष्यालु भक्तो असि सखा चेति रहस्यं एतदुत्तमं। तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है। सर्वप्रथम भक्त होना और भगवान के साथ संबंध में जुड़ना, ये दोनों चीज भक्ति में बहुत आवश्यक है। यदि संबंध का पता नहीं है तो संबंध स्थापित करने के लिए ही तो गुरु के पास जाना होता है। संबंध बांधते हैं गुरु, अकेले अकेले पढ़ते पढ़ते संबंध नहीं बनता। संबंध तो व्यक्ति व्यक्ति के बीच में बनता है और अपने आप नहीं बनता। किसी को मध्यस्थी करनी पड़ती है, जो बीच में रहता है वो संबंध, वो गुरु कहलाता है। इसलिए तो गुरु की आवश्यकता होती है संबंध। ईर्ष्यालुओं को संबंध का ज्ञान नहीं तो अभिधेय का ज्ञान कैसा? अभिधेय यानी प्रक्रिया, ईर्ष्यालु और प्रयोजन जो प्रेम है उसके बाद में भी कोई नहीं जानते। इसलिए भगवान मुक्ति दे सकते हैं परिहास में या हंसते हुए दांत बताते हुए, हाँ सबको मार कर मुक्त कर देते हैं, हाँ शिक्षा भी देते हैं। तो यहां दंत वक्र यानी जिसके दांत ही बांके सब बाहर आते हैं, ऐसे असुर। तो वो हंसा था अनिरुद्ध, ये दंत वक्त्र की पुत्री को ये अपहरण कर गया। प्रभुपाद जी दूसरी बात बताते हैं कि ज्यादातर स्वयंवर में ही ये लड़ाई झगड़ा पैदा होता है। इसके पीछे अच्छी शौर्य कला दिखाने का उत्तेजन मिलता है, और वो अपनी अपनी कुशलता बनाने बताने का मौका मिलता है मित्रों में। तो मित्रों में क्या होता है कि वो लोग एक दूसरे की टीका भी कर सकते हैं, हंसी मजाक भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हंसी मजाक में कोई गलती भी करता है तो उसको चुनौती देते हैं। यदि कोई अकलमंद ज्यादा है, दूसरा अकलमंद नहीं लेकिन शक्तिशाली ज्यादा है, तो क्या करेगा? अकलमंदी को हटाने के लिए चल आ जा सामने, मैं देख लूंगा करके लड़ते हैं। लेकिन यदि कोई इस बाबत में प्रवीण है या दक्ष है, कुशल है, या दूसरा दूसरी बाबत में कुशल है, सब अपनी अपनी कुशलता बताने के लिए, यानी कि अपनी अपनी कीमत बताने के लिए शौर्य कला लड़ते थे, लेकिन बाद में समझौता हो जाता था, एक दूसरे को स्वीकारते थे और ठीक ढंग से। आजकल क्या है, शादी के मामले में दहेज ही अपने स्वजनों की कुशलता बताने का प्रयत्न नहीं, बल्कि लड़की या लड़के दोनों का भोग ले लेता है। दहेज की प्रथा मार डालते हैं। किसी लड़की यदि भाग गई तो घर वाले सोचते हैं कि देखो उसने अपनी मर्जी तो कर ली लेकिन हमारा घाटा बुला दिया। ये लड़का बाकी है शादी करने के लिए तो उसकी साथ कोई बहू आएगी वो भी बिना दहेज की आएगी, हमें तो कोई पैसे मिलेंगे ही नहीं। इसलिए मारते हैं, अपने बच्चों को मार डालते हैं। तो ये कलयुग में विकृत स्वरूप। लेकिन यहां जो प्रभुपाद जी ने बताया है कि ये तो शौर्य कला, एक दूसरे क्या प्रवीणता है, क्या कुशलता है, इसलिए वो लड़ते बाद में समझौता हो गया। तो इस दक्ष के यज्ञ में भी बाद में समझौता हो गया। वहां तो ठीक है, शिव जी ने अपने त्रिशूल से दक्ष का मत्था भी काट लिया, फिर भी समझौता हुआ। क्यों? कि ये दक्ष प्रजापति है, प्रजा पैदा करना उसका अधिकार है और उसी के लिए ही तो ब्रह्मा जी ने उसे पैदा किया है, तो उसकी कुशलता पैदा करनी है। अभी मत्था काटो तो चलो दूसरा लगा दो, तो बकरे का लगा दिया, क्योंकि बकरा भी कुशल होता है। बकरे का महत्व मुसलमानों में क्यों है ज्यादा पता है? क्योंकि बच्चे पैदा करने में दक्ष कुशल। इसलिए बकरा कुर्बानी में और प्रजा पैदा करने में दोनों में इन लोगों के लिए प्रमुख होता है। तो यहां हमें कुछ सीखना मिलता है। वैसे ये जब हम पढ़ते हैं तो रोचक लगता है कि देखो आपके क्या मारामारी हो रही है। जिस प्रकार बलदेव ने अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में द्रुत क्रीड़ा के समय कलिंगराज दंतवक्र के दांत निकाल दिए थे, उसी प्रकार से वीरभद्र ने दक्ष तथा कुशा दोनों के दांत उखाड़ दिए। ये तो देवता थे, सभी देवता कहलाते हैं। दक्ष प्रजापति पुरुष वो तो ब्राह्मण है। तो एक ने शिव जी को शाप देते समय, अभी दक्ष शिव जी को शाप देता है तो हंसकर शाप देता है दांत दिखाकर, और दंतवक्र ने बलराम के सामने दांत बताए थे। वो द्विविध गोरिल्ला आया था वृंदावन में, उसने भी दांत निकाले थे, तो बलराम ने तुरंत अपमान समझा, सफाई कर दी उसको। किसी को जंगा बताना वो भी अपराध है। दुर्योधन ने द्रौपदी को जंगा बताई थी, तो वो अपराध के लिए ही वो जंगा को पारने का भीम ने निश्चय किया था और भगवान श्री कृष्ण ने अप्रूव किया। अंग्रेजी में कहावत है टूथ फॉर ए टूथ, दांत के सामने दांत और आंख के सामने आंख। देखो भग की आंख निकाल दी, कल आया था भग, वो तो यज्ञ करने के लिए आया था, लेकिन शिव जी का अपमान करते वो कुछ नहीं, वो हाँ वो काफी अपमान कर रहा है, मजा नहीं, यूं सोचा उसने, तो उसने बोए चढ़ाए थे, इशारा किया था बोए, यानी कि वो भी अपमान। तो वीरभद्र ने तुरंत उसकी आंख निकाल दी। आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर ए टूथ. जो कोई आंख का दुरुपयोग करता है तो उसकी आंख निकाली जाएगी. तो इन सारे अपराध पर हमें अवगत रहना चाहिए और जिसके द्वारा हमारी चेतना शुद्ध बनती रहे. शुद्ध चेतना द्वारा ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, नहीं तो हम अपराधों के सकंजे में ही अपने आप को दोषित ठहराते रहेंगे. अपराध ही अपराध. अपराध जैसे बताया था तो उसे ग्रॉस मैनिफेस्टेशन, वो साक्षात प्रकट होता है. अपराध चीज प्रकट होती है. कोई यदि मन में सोचता है तो वो प्रकट नहीं. मन में किसी को गाली दे देता है तो वो प्रकट नहीं. पर लेकिन ये मन को काबू में नहीं रखता तो मुंह से छूट जाएगी गाली, सही वाचा में आ जाएगी. जिसका मन काबू में नहीं है गाली देने में तो वो वाचा में प्रकट होता है. समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग गाली बोलते हैं. तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि मन में बोलते हैं और मन नियंत्रित नहीं है, इसलिए वाचा में प्रकट होती है. जो मन से नियंत्रित नहीं रहता है, वाचा से नियंत्रित रहता नहीं रहता है, तो वो क्या जैसी गाली बोली ऐसा कर्तव्य, गर्भित कर्तव्य नहीं कर सकता है क्या? क्योंकि वो अपराध बन जाए, वो ग्रॉस मैनिफेस्टेशन, वो साक्षात प्रकट होता है. इसलिए भक्ति के भाव में विशुद्धि द्वारा अपने मन को शुद्ध करके, वाचा को शुद्ध करके, अपने कर्तव्य को भी शुद्ध करना होता है. एक एक कर्तव्य बिना अपराधी, निरपराधी जीवन भक्तों का होता है. नहीं तो यहां जैसे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि. जो जिस प्रकार से भगवान की शरणागति लेता है उसी प्रकार से ही भगवान उसे प्राप्त होते हैं. कोई तामसिक श्रद्धा से भगवान को बचता है तो उसका तामस प्रकट होगा, वो भगवान की जो प्रेम वाली बातें समझ नहीं पाएगा. जैसे तांत्रिक होते हैं, तांत्रिक होते हैं तो तामसिक श्रद्धा के कारण जो तांत्रिक है सात्विक होते ही राजसिक और तामसिक. तो तामसिक श्रद्धा वाले गर्हित कर्तव्य द्वारा अनुष्ठान करते हैं, उनके सारे कर्तव्य भगवान को पहुंचते नहीं, इसलिए वो ज्यादातर माया के चक्कर में फंसे रहते हैं और दूसरों का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं. तो ये सारी बातें भक्ति के लिए नहीं, भक्ति को अनुरूप नहीं. यदि जो भक्त हैं तो इन सारी चीजों से निरपवाद रूप जागृति रखनी चाहिए. सब शास्त्र में जो बताया है तो वास्तविक है और सचमुच जैसा हमारा कर्तव्य है वैसा ही हमें परिणाम मिलेगा. जैसा हमारा कर्तव्य है वैसा ही परिणाम मिलेगा. कौन कहता है कि किस समाज में न्याय नहीं है, भगवान के घर न्याय नहीं? ये सब पूरे पूरा न्याय. ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यापात. सभी को जबरदस्त से भगवान के पथ को अनुगमन अनुसरण करना ही पड़ता है. जिसने ये नश्वर देह प्राप्त किया है, देह छोड़ना ही पड़ेगा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युम जन्म ध्रुवम मृतस्य च तस्मात् परिहार्य थे तत्र का परिदेव। दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं तो मूर्ख तो क्यों रहा, जो जन पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिस चीज की मृत्यु निश्चित है वो पुनः प्रकट होगी ही होगी, तो आने जाने वाले स्वभाव पर क्यों तू रोता है। तो हमारी नासमझ से अनर्थ और अपराध जब पैदा होते हैं तो हमें ये अपराधों से भी अवगत रहकर हम कैसे इन चीजों से मुक्त हो सके। तो सबसे बड़ा उपाय भगवान का नाम है। क्यों? क्यों नाम लेते समय नाम की महत्ता से हमें पूर्णतः जानकारी प्राप्त करनी होती चाहिए, उसके उपरांत हमारे जीवन में अनर्थ निकाल करके ही हम शुद्ध नाम ले सकते हैं, अपराध मुक्त जीवन बिता सकते हैं। नाम प्रत्यय अपराध न करें, और अंत में सेवा अपराध, सेवा अपराध। तो इन चार प्रकार के अपराध पर हमें, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, धाम अपराध और सेवा, चार प्रकार अपराधियों को योग्य सजा मिलती ही है। कौन कहता है कि नहीं मिलती? तो किसी को कोई प्रश्न है? नहीं, द्रुत क्रीड़ा में जब दाव लगाते हैं तो कोई हार जाता है, लेकिन वहां कोई छल कपट भी करता है, छल कपट पकड़ा जाता है, सही? द्रुत क्रीड़ा यानी कि वो छल कपट की ही क्रीड़ा है। तब शव ये बताने का समय आ जाता है, कोई कपटी व्यक्ति है उसके साथ खेल रहे हैं। युधिष्ठिर जानता नहीं था, शकुनी जानता था, सही? वो कपटी था। तो द्रुत क्रीड़ा में जब हार गए, दाव पर दाव लगाने लगे, क्योंकि शौर्य बताना है, क्षत्रिय फर्ज। बाद में क्या परिणाम लड़ाई में पैदा हुआ? क्रोध, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। तो जब जीतते नहीं तो क्रोधित होते। अब कहीं भी देखो, अमेरिका में वो लास वेगास कैसीनो इत्यादि गोलीबार चलते ही रहते, फटाफट उड़ा देते हैं। जब हार जाने वाले किस तरह अपना अपनी ताकत बताना चाहते, किसी ने 1,00,000 मारा होगा तो उसने उड़ा दिया। तो ये हमेशा परिणाम लाता ही, रिजल्ट आएगा ही आएगा, प्रतिकार मिलेगा। एक एक कर्तव्य परिणाम पैदा करता है, लेकिन एक भगवान की प्रीति का ही कर्तव्य तो परिणाम नहीं पैदा करता। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजां गोविंदमादि पुरुषम्। हर एक जीव को इस प्रकार अज्ञानता जनित कर्मों का भोग के कारण ही जन्म मरण के चक्कर में गुमना होता है। जो जीवन का लक्ष्य है, तो ये लक्ष्य बताने के लिए भी किसी को सजा तो देनी ही चाहिए, लेकिन वो अधिकृत आदमी द्वारा ही होती है। तो शिव जी ने वीरभद्र को भेजा इन चीजों, तो ये धर्म सुसंगत है। धर्म के विरुद्ध नहीं। तो धर्म की बातें बहुत ठीक ढंग से जाननी चाहिए। सही, और कोई? क्या गलती नहीं कर सकते? भृगु संहिता लिखने वाले भी थे, लेकिन वो भी उपस्थित थे। अवश्य, क्यों नहीं? वो अपराध या शिक्षा जो कहो, तो वो भी अपनी अकल ठिकाने लाने के लिए ही होता है। भृगुमु ने क्या कोई प्रतिकार किया है? सामने लड़ने गए हैं क्या? लेकिन उनको दंडित किया। अपराध तो अपराध ही होता है। वैष्णव इन सारे अपराधों से बचता है। गलती हो सकती है, लेकिन एक तरफ अपराध करे, दूसरी तरफ प्रतिकार करे, वो ठीक नहीं। तब क्षमा मिलती है। ये तो शापित है, शाप देता है दक्ष शिव जी को, शाप देता है। पावरफुल है, देवता है, लेकिन वैष्णव की महत्ता जाननी चाहिए। जो वैष्णव होते हैं, जो वैष्णव की महत्ता में चुक जाते हैं, भूल जाते हैं, तो क्या अपराध हुआ? गलती तो हर एक कोई कर सकता है, लेकिन गलती की सजा के लिए पीछे हटने का पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए। चेतना की जागृति करने के लिए ही तो शिक्षा देते हैं, शिक्षा मिलती है। ये भौतिक प्रकृति भी प्रकोप क्यों करती है? क्या हम ये शरीर नहीं है? तापत्रय क्यों मिलते हैं? शिक्षा और शिक्षा का दोनों का एक ही मतलब है कि हम अपनी वास्तविक सत्यता सनातन अवस्था में आए। क्योंकि गलती की है ना, भगवान के विरुद्ध इच्छा की है और द्वेष किया है, इसलिए हमें भौतिक शरीर मिला है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सगे आंति परंतप। बाद में हम फरियाद करते रहे, ये शरीर भगवान के विरुद्ध इच्छा और द्वेष के कारण पैदा हुआ। इसीलिए शरीर के कष्टों को तो झेलना ही पड़ेगा। जो जन्म मरण के चक्कर में से छूटने का ही तो प्रयत्न करने के लिए भक्त बने हैं, फिर फरियाद क्यों करें? सही, चलो यदि थोड़ी फरियाद है, लेकिन अपराध क्यों करें? अपराध से भी बचो। अपराधी होते हैं क्या उसको फरियाद करने का अधिकारी होता है? कभी नहीं होता। जो अपराधी है वो फरियाद कर सकता है क्या? ये तो कलयुग है, अपराधी को ही फरियाद करने का अधिकार मिलता है और पॉलिटिक्स खेलने का अधिकार मिलता है और जुड़ेगा। इसलिए जिस व्यवस्था में कृष्ण चेतना नहीं है, भावना नहीं है, वो बेकार की व्यवस्था है। प्रभुपाद जी उसमें कहां संबंध? बिल्कुल नहीं। हमारी संस्था में भी यदि जब कोई गड़बड़ी है तो यही गड़बड़ी है, और कहा कृष्ण भावना का ही तो अभाव है। हमें अपनी सारी व्यवस्था में कृष्ण भावना आता है और सारी व्यवस्था संचालन इत्यादि कृष्ण भावना से करना चाहिए। सर्वभूत ही तेर होता है सबका हित दिखना चाहिए। जय जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय।